हम लोग भगवद गीता के दशम अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे माइक पे बोलिए, बहुत दूर बैठने की आवश्यकता से नहीं लगती, लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है तो। फाइल है आपके पास, फोन इस्तेमाल कीजिए। हाँ, फोन ले लीजिए। बृहत सामत इनको दे दीजिए, पीताम्बर प्रभु को दे दीजिए फाइल। किसी के पास आप बोलो, कोई तो श्लोक बोलने के लिए होना चाहिए। मिल गया। हाँ, बृहत साम तथा सामना,
बृहत साम तथा सामना,
गायत्री छंद साम हम,
गायत्री छंद साम हम,
मासाना मार्ग शीर्षो हम,
मार्गा मार्ग शीर्षो रसाम,
ऋतुनाम कुसुमाकर,
ऋतुनाम कुसुमाकर।
बृहत साम तथा सामनाम, साम वेद की ऋचाओं में मैं बृहत साम हूं। गायत्री छंद साम हम, छंदस में छंदों में मैं गायत्री हूं। मासानाम मार्ग शीर्षो हम, सभी महीनों में मैं मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष को क्या कहते हैं? माघ कहते हैं हिंदी में। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। मासानाम मार्ग शीर्षो हम, अर्थात मासों में मैं माघ हूं। माघी कहते हैं ना मार्ग शीर्ष को, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। ऋतु नाम कुसुमाकर, सारी ऋतुओं में मैं कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु हूं, जिसमें बहुत सारे फूल उगते हैं। तो इन सब वस्तुओं को देख करके हमें भगवान की स्मृति होनी चाहिए। अनुवाद, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूं। गीता भूषण टीका। वेदों में मैं सामवेद हूं, यह पहले भी कहा गया था, परंतु यहां भगवान अब विशेष रूप से कह रहे हैं। आपको याद है ना, वेदानाम सामवेदोस्मि, क्योंकि सारे वेदों में सामवेद वह वेद है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर ऋचाएं हैं, गाया जा सकता है। तो गायन की दृष्टि से उत्कृष्टता होने के कारण इनको सामवेद को सारे वेदों में प्रमुख कहा गया। अब कह रहे हैं कि सामवेद में भी जो ऋचाएं हैं उनमें एक बृहत साम ऋचा होती है, वह मैं हूं। साम अर्थात ऋग्वेद के शब्दों पर आधारित गीत। तो इनमें बृहत साम जो त्वाम इधि हवामहे, ऋग्वेद 6.46.1 से प्रारंभ होता है, वह विशेष है, क्योंकि इसको रात्रि के अंत में इंद्र की महान शक्ति के गुणगान में गाया जाता है। इन सब के बारे में व्यक्तिगत रूप से हम तो नहीं जानते हैं, जो टीका में है वही प्रस्तुत है कि बृहत साम नाम का एक ऋचा है, या एक ऋचा मतलब एक गीत है जिसको रात्रि के अंत भाग में गाया जाता है इंद्र की पूजा के लिए, और वो बहुत विशेष है, तो इसलिए उसको भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की विभूति कहलाती है। ठीक। छंदस अर्थात नियत अक्षर श्लोकों में मैं गायत्री हूं, मतलब जिनका एक नियमित पद होता है उनको छंद कहते हैं। यह उत्कृष्ट है, क्यों उत्कृष्ट है देखिए, यह उत्कृष्ट है क्योंकि यह तीन द्विजातियों के द्वितीय जन्म का हेतु है। तीन द्विजाति मतलब जिनका दोबारा जन्म होता है, द्विज द्विज मतलब जिनका दोबारा जन्म होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का द्विजाति संस्कार होना चाहिए, इसीलिए यहां बोल रहा है तीन द्विजातियों के द्वितीय जन्म का हेतु है। हेतु है मतलब इसके द्वारा उनका द्वितीय जन्म होता है, इसके द्वारा उनका महान शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए उनको इसको गायत्री को विशेष कहा गया है। गायत्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। साथ ही श्रुति के अनुसार यह ब्रह्म से अभिन्न है। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किमच, गायत्री यह सब कुछ है जिसका भी अस्तित्व है, छांदोग्य उपनिषद। ये गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली है। एक भक्त बता रहे थे, अब कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, कह रहे थे गायत्री मंत्र को थोड़ा सा भी थोड़ा परिवर्तित करने से वह ब्रह्मास्त्र वाला मंत्र बन जाता है, इतना शक्तिशाली है। सारे मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र कहा जाता है। अब इसकी ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए संग हो सकती है जिनका दूसरा मतलब द्विजातीय संस्कार हो चुका है, उन्हीं के बाद उन्हीं को गायत्री के बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जो गायत्री दिया जाता है वो उससे भगवान, वो भगवान से अभिन्न है, अब उससे अधिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, उससे अधिक नहीं बोल सकते। मासों में मैं अन्य मासों से उत्कृष्ट मार्ग शीशु हूं, क्योंकि इसमें नव धान्य आदि संपत्ति प्राप्त होती। नव धान्य मतलब नया अन्न इसमें उगता है। तो अब टीका से समझ में आ रहा है कि क्यों वो विशेष कहा जाता है। उसमें कौन सा फेस्टिवल होता है जब नया अन्न आता है? एक तो हम लोग पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हाँ, लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं। और हम लोग नॉर्थ इंडिया में भी कुछ मनाते हैं ना, बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी नहीं, माघ महीने में माघ मेला होता है। नहीं, मार्ग शीर्ष माघ नहीं है ना, माघ नहीं है, मार्ग शीर्ष कार्तिक, मार्ग शीर्ष पौष और फिर मार्ग। हाँ तो ये गलत हुआ, तो मकर संक्रांति मनाते हैं इसमें, ठीक है। हाँ थोड़ा सा कटना है ना, ना ना, माघ का महीना ठंडा होता है बहुत। माघ के महीने में तो इलाहाबाद में माघ का मेला लगता है, बहुत ठंडा होता है। वो नहीं, मार्ग शीर्ष सही कह रहे हैं, कार्तिक के बाद। हाँ यही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे नवधान की प्राप्ति होती है, चावल की कटाई होती है उस समय, तो धान इत्यादि प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको स्पेशल कहा जाए। यस प्रभु,
इट इज ये बहुत अच्छा महीना है साउथ इंडिया में, सब इसको इस महीने में इट इज बहुत ही अच्छे गानों से भगवान को वो अच्छे अच्छे गीत गाते हैं भगवान के लिए इस महीने में।
ओके
और फ्लावर्स भी ऑफर करते हैं अच्छे अच्छे इस महीने में, स्पेशली माना जाता है।
ठीक, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ क्योंकि इसमें ना तो अधिक गर्म होता है और ना अधिक ठंडा, साथ ही इसमें सुगंधित पुष्प प्रकट होते हैं और मेरे लिए बहुत से उत्सव होते हैं। एक छोटा सा क्विज है, बसंत ऋतु में भगवान के लिए कौन कौन से उत्सव हैं जो हम जानते हैं? पहली बात तो ये दिक्कत होगी हमें आने की, बसंत ऋतु होती कौन सी? नवंबर, जनवरी फरवरी तो समझ में आता है, फाल्गुन और चैत्र तो उसको बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत, खैर अब इस पे बहुत सारा बहस हो जाएगी, लेकिन आपके क्रैक पर रिसर्च है, कल की क्लास से पहले कुछ आप सोच सकते हैं कि बसंत ऋतु में भगवान के लिए कौन से उत्सव होते हैं। बसंत पंचमी है, लेकिन चलिए ठीक है। तात्पर्य जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, इतना तो समझ में आता है कि बसंत में बहुत सारे फूल उगते हैं, ये तो ठीक है, और उनको भगवान के लिए अर्पित कर सकते हैं। तात्पर्य जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, और किसके लिए गाया जाता है? इंद्र के लिए गाया जाता है, उसकी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। ठीक, संस्कृत के काव्य के कुछ कहना चाहती थी आपको बृहत साम के बारे में? अच्छा, तो माता जी कह रहे हैं कि राग भैरवी आधी रात में गाया जाता है, तो ये बृहत साम में गाया जाता है। ठीक, ऐसा होता है, स्पेशल होता होगा कुछ। एक मिनट, इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? मेरा फोन दे सकते हैं? अरे ठीक है, ठीक, ओके। कहाँ थे हम लोग? पढ़ते हैं आगे। संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान हैं, इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। एक अद्भुत बात है कि लोग इस बात को समझते नहीं है, वो समझते नहीं है कि गायत्री की उपासना भगवान, गायत्री मंत्र के उच्चारण भगवान कृष्ण की उपासना के लिए है, उन पर ध्यान के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, सोचते हैं गायत्री देवी की उपासना हो रही, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि गायत्री के द्वारा भगवान कृष्ण की उपासना हो रही, भगवान कृष्ण से अभिन्न है ये पूरा एक परिवार ही है इसके ऊपर ना, गायत्री परिवार है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि भगवान के ऊपर ध्यान किया जा रहा है, ये उनको नहीं पता कि भगवान कौन है। कितनी आश्चर्य की बात। एक इंटरेस्टिंग बात गायत्री के संबंध में यह है कि भगवान श्री कृष्ण के वेणु से निकली हुई ध्वनि वही गायत्री मंत्र है जिसके द्वारा ब्रह्मा जी दीक्षित होते हैं। गायत्री की ध्वनि भगवान, वो भी है, भक्तों से सुना है तो प्रमाण ही है, अभी याद नहीं आ रहा पूरी तरह से किसका रेफरेंस, लेकिन पढ़ा है, सुना है कि ओम की व्याख्या गायत्री है, और ये तो जीव गोस्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं इसको किस प्रकार से कि गायत्री की व्याख्या श्रीमद् भागवतम है। इस प्रकार से बताओ टीका में 1.1.1 की टीका में बताते हैं, ठीक है। और ये श्रीमद् भागवतम का लक्षण है एक कि वो गायत्री, एक शब्द संस्कृत का आता है गायत्री व्याख्यान, ऐसा कुछ है कि गायत्री मंत्र का व्याख्यान है श्रीमद् भागवतम ऐसे, ठीक है। कहां थे प्रभुपाद जी इस बात को प्रथम स्कंद के तात्पर्य में भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र उच्चारण करने में सफलता प्राप्त करता है तो वह भगवान की स्थिति को समझ पाता है। तो ऐसा नहीं कि चाय पिए और प्याज खाएं और उसके बाद गायत्री मंत्र करें। हमारे दादाजी ऐसा करते थे तो उसमें कुछ पता नहीं था, प्याज लहसुन भी खूब घोट घोट के खा रहे हैं और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। बहुत शुद्ध आचरण चाहिए, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्राह्मणों को ही दिया जाता था, अर्थात वह शुद्ध आचरण वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी खा रहा है और मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ऐसा फिर लाभ नहीं करता, ठीक है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है, स्पष्ट है। जब इसका जप करने में सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो लोग हैं दीक्षित गायत्री में उनको पता होना चाहिए कि एक मंत्र है, हम लोग कहते हैं मंत्र तो नहीं बोलेंगे, गोपाल गायत्री का उच्चारण करके ही गोप कुमार गोलोक पहुंच जाते। और इतना तो बोल सकते हैं ना, नाम मंत्र नहीं बताएंगे, लाभ तो बता सकते हैं। कि ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है काम गायत्री का उच्चारण करके व्यक्ति जीव कृष्ण की तरफ भागने लगता है, बिकम्स अट्रैक्टेड टू कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है इस शिक्षा का, कभी कभी लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं। कुछ नहीं, ये भी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, माइक बताइए। कभी कभी लोग कहते हैं भाई इसका कोई महत्व नहीं है, पर महत्व नहीं तो ऐसे दे रहे दीक्षा, केवल केवल डीटी वर्शिप के लिए दीक्षा दे रहे हैं।
नहीं, गुरु महाराज जब दीक्षा दिए तो ये बात बहुत कंफर्म किए, एक रूम के अंदर प्रबंध करके बोले कि अगर इसका कोई मिसयूज या कुछ गलत तरीके से इसका कोई मैंने उच्चारण भी करे तो इसका गलत असर भी होगा,
गलत असर पड़ेगा। और इसीलिए आवश्यक है कि ट्रेनिंग दी जाए पहले, ठीक है, ऐसा नहीं हर किसी को दिया जाए। और ये भी है कि जो इच्छा हो वो पूर्ण कर सकता है, ठीक है। अब दिक्कत ये है अगर भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं तो फिर वह इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। सनक सनातन प्रभु से मजाक करते हैं कि कुछ ब्रह्मचारियों का जब सेकंड इनिशिएशन होता है तो उसके बाद शादी हो जाती है क्योंकि वह भौतिक इच्छाएं अगर सत्यरोहित नहीं हुआ है तो जब कर रहा है तो फिर वो पूर्ण होने लग जाएगा। सिक्स थ्रेड का मुझे पता नहीं क्या कारण है, लेकिन क्या कारण है दीजिए।
एक्चुअली जो ब्रह्मचारी है, हाँ, जैसे मुझे माना आप मायापुर गुरुकुल वगैरह देखेंगे तो उनका थ्री थ्रेड है, मतलब जैसे
हाँ
तीन रहता तो वो सिर्फ एक ही आश्रम का दायित्व में है। तो जब मतलब जैसे कोई आगे चल के अगर मतलब गृहस्थ आश्रम को प्रवेश करेगा तो उनको
माइक पे बोलिए, पास सुनाई कुछ भी नहीं पड़ेगा। हाँ,
तो उनको अपने पत्नी का भी भार मैंने उनके लिए उनके ये से करना पड़ता है, तो इसलिए
ये तो सब उन लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अब चलिए ठीक है, इस पे ज्यादा विचार ना करें। 6, 9, 3 में पॉइंट ये है कि सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। माइक पे बोलिए, ऑन करिए, ऑन कर लिए।
ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेगा तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता?
नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हरिदास ठाकुर जी की ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई थी, क्या है नाम अपने आप में शक्तिशाली भगवत प्रेम देने के लिए, लेकिन कहने करते कि यह मंत्र कोई हल्का मंत्र नहीं मानना चाहिए, ये भगवान से अभिन्न है, ये बात बोली जा रही। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करना है, पढ़ लिया हमने, गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। समझ में आ रहा है ना, सतोगुणी आचरण नहीं है तो फिर ये लाभान्वित नहीं होगा। हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को भी आप दे सकते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्म का नाद मतलब भगवान का शब्द अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं मतलब भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया, गायत्री दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को यह दिया। मासों में अगहन यानी मार्ग शीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तो इसमें कोई खास हमें समझाना नहीं है, तो स्पष्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि क्लास समाप्त हो गई है, एक फाइल और भेजी गई है। ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। द्युतम छलयतामस्मि,
द्युतम छलयतामस्मि,
तेजस्तेजस्विनामहम्,
तेजस्तेजस्विनामहम्,
जयोस्मि व्यवसायोस्मि,
जयोस्मि व्यवसायोस्मि,
सत्वं सत्ववतामहम्,
सत्वं सत्ववतामहम्।
छलने वालों में मैं द्युत क्रीड़ा हूँ, ठीक है। इस पे कुछ टीका किया जा सकता है, अभी करते हैं थोड़ा सा। तेजस तेजस्विनाहम, तेज मतलब, देखिए तेज मतलब यहाँ चमक धमक बोला गया, लेकिन तेज का अर्थ है दूसरों पे प्रभाव डालने की क्षमता। दूसरों पे प्रभाव डालने की क्षमता को तेज कहा जाता है। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जो लोग जय प्राप्त करना चाहते हैं उनका मैं वह प्रयास हूं जो सफल होता है। जय प्राप्त करना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है, बहुत प्रयास कर रहा है, तो उन जिन प्रयासों के में अंततोगत्व वह सफल हुआ वह प्रयास भगवान है। सत्वम सत्ववतामहम, एक मिनट, सत्वम का अर्थ क्या है? बलवानों का। सत्व मतलब जो बलवान है उनका बल मैं हूं, ठीक है। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। गीता भूषण टीका। एक दूसरे को छलने वालों में मैं द्युत क्रीड़ा हूं जिसके द्वारा वे अपना सब कुछ खो देते हैं। तो इस पर थोड़ी व्याख्या करना चाहते हैं। देखा तो नहीं है, मैंने सुना है ऐसा, लास वेगस नाम का एक अमेरिका का स्थान है जहां बहुत सारे जुआ घर हैं। आप जानते हैं, गए कहे हैं, सुना है, ठीक है। वहां एक विशेष बात यह है कि वहां पे घड़ी नहीं होती, घड़ी नहीं होती उस जुआ घर में, घड़ी नहीं होती, क्योंकि लोगों को याद ही ना रहे कि कितने समय से वो जुआ खेल रहे हैं। पता नहीं कोई गया है, आप गए हैं लास वेगस उद्धव कीर्ति प्रभु? यस नो, कुछ तो बताइए। नो, गुड बॉय। तो पता नहीं, रोणी नंदन प्रभु से पूछिएगा, हमको तो पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने ऐसा, बहुत सबसे बड़े जुआ घर वहां पे है। ऐसा सत्य बात है प्रभु जी की जुआ घर वहां पे, वहां पे, वहां पे उसमें क्लॉक नहीं होती, ऐसा है सत्य बात? ओके, प्रभु जी हमारे इसमें अथॉरिटी है तो बताएंगे, हम लोग तो गांव वाले हैं, हम क्या समझानेंगे इसके बारे में। लेकिन ये हम, मैंने भी अनुभव किया है कि जब लोग ताश खेलते हैं तो कितना घंटा निकल जाता है मालूम चलता है, 8 घंटे 10 घंटे खेलते रहते हैं। अब देखिए इस पे कितने उत्साहित है लोग टीका करने के लिए, लेकिन बोलिए।
मैंने मेरे मामा जी को देखा था, सुबह 8 बजे उठेंगे, व्हाइट पजामा कुर्ता पहनेंगे, नहा धो के पत्ते खेलने जाएंगे पेड़ के नीचे, फिर दोपहर को 1 बजे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे, फिर शाम को आएंगे।
यस, मतलब इस प्रकार से अपने मानव जीवन का ही जुआ खेल देते हैं। वैसे इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं। एक, कि कोई व्यक्ति अगर भगवान से धूर्तता करना चाहता है वो कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक और बात कहना चाहेंगे कि हम धोखा किसी को नहीं दे सकते, केवल स्वयं को धोखा देते हैं। ये सब बातें तो टीका ही, मतलब बोल देना ही सफिशियंट है। बहुत अच्छी बात संबंध में गिरिराज महाराज बता रहे थे, कह रहे थे इसीलिए भक्तों की शिक्षा क्या होनी चाहिए, उनको सिंसियर बनना चाहिए। जैसे मैं पूछूं आपका जप हो गया, किसको पता है? आपको पता है, समझ रहे? मेरा जप हो गया मुझे पता है, और उसको मैं किस प्रयास के संग कर रहा हूं। ये सारी बातें का में किसी भी वक्त को आप कभी चेक नहीं कर सकते हो कितने माला कर रहा है, और फिर यह तो आप कभी भी नहीं करा सकते हो कि तुम ध्यान पूर्वक करो। तो इसीलिए केवल प्रेरणा दी जा सकती है, सिंसियर होने की ट्रेनिंग दी जा सकती, नहीं तो धोखा तो हम स्वयं खा। जिस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लगे कि भाई जगत में मैं सुखी नहीं रह सकता, एक के बाद एक कष्ट है, वह सिंसियरली भजन करेगा। सिंसियरली मतलब बिना धोखे, ईमानदारी के संग, बड़े निष्ठा पूर्वक भजन करेगा, भक्ति करेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग धोखा नहीं करते ना, हम स्वाभाविक रूप से, जैसे आप देखो आप लोग प्रसाद पा रहे थे, मुझे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ठीक है भाई दाल रोटी खाऊंगा, ये सिंपल खाऊंगा कि मुझे ठीक होना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने तो हम ये खाएं और रूम में जाकर के कुछ पकौड़ा खाना खाना चालू कर देंगे, किसको किसको कष्ट प्राप्त होगा, किसको होगा, आप लोगों को होगा, है ना, नहीं केवल मुझको प्राप्त होगा। और ये बात ध्यान रखें कि कलयुग में सारे धर्म के पॉइंट चले गए, चारों पॉइंट चले गए। क्या क्या चार पॉइंट है धर्म के, सत्य दया तपस्या और शौच, तो तीनों समाप्त हैं, केवल एक पॉइंट रह गया है और वो है सत्य। ईमानदारी से भक्ति करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको याद है ना भगवान की प्राप्ति के लिए तीन पॉइंट क्या थे, निष्कपटता निरंतरता और अनुकूलता। निष्कपटता इसको भी आगे भी बोला गया है, निर्वलीक भजन, भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी ने निर्वलीक मतलब बिना कपट किए भजन किया तो भगवान के सामने प्रस्तुत हुए, भगवान तो हृदय में है, तो स्वाभाविक रूप से मतलब सिंसियरली कह सकते हैं वाकई मुझे अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान मेरी मदद करेंगे। नहीं छल करना चाहते हैं, कोई उदाहरण है कि जो भगवान से छल करना चाहता हो और भगवान ने छल किया, छल किया मतलब उसे धोखा दे दिया, याद नहीं आ रहा। भगवान से वो छल करने का प्रयास कर रहा था, हाँ याद आ गया, दुर्योधन। दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए तो दुर्योधन ने सोचा कि अरे इसको खाने पीने की शौक है तो ऐसा करता हूं सुंदर महल बनवा देता हूं, महल भी किसका, दुशासन का, अपना महल नहीं दे रहा था, दुशासन का महल दे देता हूं, रहने की अच्छी व्यवस्था करता हूं, खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। लेकिन उसके मन में छल था तो भगवान ने कहा क्या, ना तुम्हारी मेरे से प्रीति है नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं, मुझे भूख है नहीं और तुम्हारी मेरे से प्रीति नहीं है, और तुम मेरे पांडवों से द्वेष करते हो, अगर तुम पांडवों से प्रेम करो तो मैं तुम्हारा सत्कार स्वीकार कर सकता हूं। और तुरंत ही देखिए वह भगवान को बांधने के लिए उद्यत हो गया। तो इस प्रकार से भगवान हर व्यक्ति का छल समझते हैं, और भगवान ने किसी के संग छल किया हो ये तो बड़े स्पष्ट है, वामन देव बलि महाराज से वामन देव के रूप में छल किया भगवान, ठीक है। ओके, तेजस्वियों, एक और आपको लीला याद आ रही है युधिष्ठिर महाराज की, किस प्रकार से वह द्यूत क्रीड़ा में पूरी तरह मतलब क्या कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे बिविल्डर, भ्रमित हो गए थे, पूरा सब कुछ उन्हें खुआ दिया था। तो यह बहुत खराब चीज है, इसको उसे दूर रहना चाहिए। ये जो सट्टाबाजी होती है और क्या शेयर्स होते हैं, ये सब में स्पेकुलेशन होता है, और इस प्रकार उसमें पैसा लगा करके व्यक्ति का चित्त भ्रमित हो जाता है। देखिए जो हमारे कर्म में है वो ऐसे ही आएगा, और जो हमारे कर्म में वैसे जाएगा। आज ही मुझे हमारे पार्थ बता रहे थे किस प्रकार से दो लोगों ने उनको फोन किए, धोखेबाजी करते हैं ना कि अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, कितने लोग पैसा कमाते हैं और उनका अकाउंट से पैसा चला जाता है, और कभी कभी अकस्मात पैसा आ जाता है। तो इसके लिए मानव जीवन नहीं है, है ना, मानव जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए है। हाँ जी प्रभु जी,
अगर अगर कोई कहे कि उसका काम ही शेयर्स में है,
जैसे उसका काम ही शेयर में है,
शेयर मार्केटिंग वो करता है, उसको उसका इंक्लिनेशन भी है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है?
कुछ और बिजनेस कर सकता है वो,
पूरा फैमिली बिजनेस शेयर्स पे है,
मतलब बार बार यही बोला जा रहा है, इसका मतलब चाहे आप कुछ भी बोली करेंगे तो हम वही, जब इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कोई आपके सामने, प्रभु जी क्या करना चाहिए, और आप कुछ बोलेंगे कुछ और बिजनेस करो, फैमिली बिजनेस है, फिर कुछ और बोलेंगे, फिर और कारण देगा तो कहे फिर जो मन में आए वो करो।
अंतोगत वो तो जुआ खेल रहा है ना, वो शेयर्स मार्केट में
देखिए है तो वो जुआ ही, लोग उसको कुछ कहते हैं कैलकुलेटेड है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली जुआ ही है। तो धन देखिए समझ नहीं पा रहे लोग कि धन इकट्ठा करने से केवल मति भ्रमित होती है, भोग आसक्ति बढ़ जाती है। तो ये सब बातें वह स्वीकार करेगा जिसके जीवन में भक्ति प्राथमिकता है, जिसके जीवन में भक्ति प्राथमिकता नहीं है तो अब क्या बोलेंगे। अभी एक हमारे स्टूडेंट आर्मी में ज्वाइन किया है, बोला प्रभु जी मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ क्या करूं, मैंने कहा आर्मी छोड़ दो, अब तुम ब्राह्मण कार्य करना चाहते हो, बन रहे हो क्षत्रिय, क्षत्रिय कार्य कर रहे हो, कैसे तुम संस्कृत सीखोगे बताओ, कैसे सिखाएंगे संस्कृत। अब मैं कहूं कि मैं AK-47 चलाना मतलब चाहता नहीं हूँ, गायन चला भाई मैं ब्राह्मण कार्य करना सीख रहा हूँ, उसी में समय लगा रहा हूँ, मैं गोली चलाना था ना सीखूंगा, क्या मतलब है और जरूरत क्या है मेरे, समझ रहे ना मेरी बात? तो व्यक्ति की कितनी इच्छा है, जब किसी की तीव्र इच्छा होती है तो इन सब बातों के प्रति वैराग्य अपने आप आ जाता है, समझ में आने लगता है कि सब गलत है। थोड़ा घृणात्मक उदाहरण दूंगा मैं, भागवत का है लेकिन अपने जीवन में देख रहे हैं। अब देख रहे थे कि चैम्बर जो गंदा था उससे मल बाहर आ रहा था और सब लोग कितना घृणा से उसको बाईपास करके जा रहे थे। कोई ये तो नहीं कह रहा था कि थोड़ा मैं से रख लूं अपने बटोर लूं, पांव पड़े तो सोचे धन्य हो गए, नहीं है ना, मन में कितनी गंदी बात आ रही। लेकिन इसी प्रकार से उत्तम श्लोक लालसा महाराज भरत महाराज ने पूरे विश्व के राजा थे और पूरे जगत को ऐसे त्याग दिए जिसे मलवत, मलवत मल त्यागने के बाद मैं देखता नहीं कि कितना खाली किया, कहां जाएगा ये, क्या मैं कुछ इकट्ठा कर लूं। ये है असली वैराग्य भक्ति के द्वारा। ये सब कुछ, अब जरा ये सोचिए कि आपका फैमिली बिजनेस ये है वो है, सोचिए कि हम हैं कौन, हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं, और हमारा सुख भक्ति का सुख है। तो हमें कम से कम समर्थन नहीं देना चाहिए ऐसे लोग, उनको जो कुछ करना है सो करें, लेकिन वो गलत कार्य करेंगे और हम उनका समर्थन करेंगे तो उसका पाप हमारे सर पे आएगा। ठीक है, बाकी इसको जो करना वो करता ही है।
आप 50% या 10% कुछ भगवान की सेवा में लगाओ, इस तरह से नहीं कह सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैंने ऐसा को किसी को बोला नहीं है इसमें।
देखिए पाप करना इसका मतलब हम एनकरेज कर रहे हैं कि वो पाप करता रहे और इस प्रकार से वह इसमें लगाता रहे। हमने तो खैर किया नहीं है, लेकिन मति बहुत भ्रमित होती है इस प्रकार से, कितना यहाँ पे कहाँ पैसा लगाऊंगा, कितना पैसा आएगा, इसी में व्यक्ति लगा रहता है। और स्वाभाविक सी बात है, मंदिर में धन आ रहा है उसमें शेयर का पैसा भी आता है, लेकिन मंदिर वाले नहीं बोल रहे हैं शेयर में लगाओ शेयर में लगाओ, उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर देते हैं अलग बात है, लेकिन स्वयं नहीं बोल रहे हैं कि शेयर में लगाओ शेयर में लगाओ।
मुझे एक चीज और देखे तो ऐसे हर बिजनेस में जो भी है सब में ये होगा या नहीं होगा, जैसे सोने चांदी का बिजनेस,
ठीक है सोने चांदी का बिजनेस है, लेकिन ये वाणिज्य जो है ये भगवान के द्वारा अलाउड है, शास्त्र के द्वारा अलाउड है। कपड़े का बिजनेस, ये सोने चांदी का बिजनेस, ये सब प्रमाणिक है। गेहूं इत्यादि का बिजनेस, ये सब अलाउड है। रिस्क तो है जगत में हर जगह है, लेकिन ये तो केवल धोखाधड़ी है एक्चुअली, कौन मानेगा? लेकिन धन की बात कौन मानता?
और जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते
हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो चलता ही आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आप आज से थे ना जमीन बेच रहे हैं लोग, जमीन तो बहुत सामान से बेच रहे हैं, वो कोई बड़ी बात है ना। शेयर्स को जुआ ही बोला जाता। चलिए अब इसमें पूरी क्लास गीता की नहीं दे सकते, लोग स्वीकार नहीं करना चाहते तो ना स्वीकार करें, है कि नहीं? जो लोग आप जिनको आप कल्टिवेट कर रहे हो ना स्वीकार कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, बस स्वीकार करो। धर्म रक्षति ति रक्षता, ये सोचिए कि अगर आज मर गए तो ये पाप कहाँ किसको देंगे आप? आज तो आप बोल रहे हो कि मैं ये ऐसे बैसक मात तो मैं नहीं मानता, ये है मैं नहीं मानता, मैंने भाई यमराज जी तो मानेंगे ना, आप मनवा के मानेंगे, अभी आगे आने वाला है, उन्होंने पहले बढ़ चुके हैं, संयम ताम अहम यम, संयम करने वालों में यम हूं मैं, सब ठंडा कर देंगे वहां पे। तो सारी बातों में मूल बात ये है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। बस सीधी बात यह, मानव जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जीवन में भगवत प्रेम प्राप्ति करने में जितना हम आगे बढ़ सके कम से कम इतना तो बढ़ सके, ये बात है। और ये नहीं समझेंगे तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं किसी भी बात का। ठीक है, तेजस्वियों अर्थात प्रभावशालियों में मैं उनका तेज हूं, विजयियों में मैं विजय हूं, उद्यम करने वालों में मैं उनका फलवान उद्यम हूं, मतलब बहुत प्रयासरत हैं और ऐसा प्रयास जो फलोन्मुख हुआ, फल से प्राप्त हुआ, वह मैं प्रयास हूं। यस प्रभु, कुछ कह रहे थे?
जैसे मान लो कोई किसान खेत में काम कर उसको अनाज मिलेगा, वो फल भगवान है।
यस यस यस, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। किसान का नाम लिए तो मुझे एक बात याद आने लगी कि भगवान की भक्ति और देवताओं की भक्ति में और कर्मों में क्या अंतर है। देवताओं की भक्ति कर रहा है या कुछ कर्म कर रहा है तो कैसा है? कृषिवत। कृषिवत मतलब कृषि कर रहा है, उसने फूल अनाज लगाया, गेहूं उग गया, सब कुछ बिल्कुल, फसल कटने की नौबत है, इतने में बारिश आ गई, तूफान आ गया, कर्म सफल नहीं होगा। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है? अमोघ भगवत भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर रहा है वह कभी विफल हो ही नहीं सकती। आप नाम जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इसके फल को नहीं रोक सकती। ये कृषिवत नहीं है कि आते आते एकदम से धम्म समाप्त हो गए। इसलिए भक्ति करने के लिए बहुत उत्साहित रहना चाहिए। हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा से कोई मतलब नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलते रहना चाहिए। इसका फल काटा ही नहीं जा सकता। ये सबसे फलवान उद्यम है क्योंकि इसके फल को प्राप्त भगवान स्वयं कराते हैं। उनका नाम ही अच्युत, मतलब वे अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते। कौन से गुण से? अपने भक्तों पे कृपा करने के गुण से कभी च्युत नहीं होते, कोई च्युत कर ही नहीं सकता उनको। ये बात बहुत आशादायक है। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं, समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है। और यह कृष्ण का प्रतीक है। हाँ, अब एक चीज है जो गलत तरह से गीता पढ़ रहा है, कह रहे देखो प्रभु जी जुआ कृष्ण का प्रतीक है, और कोई बारे में खेती के बारे में नहीं बोल रहे भगवान, लेकिन जुए के बारे में बोल रहे हैं। तो शेर मान लो आप कह रहे हो कि ये जुआ खेलना है, तो देखिए मैं तो कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं उसके द्वारा। ये गलत एप्लीकेशन है, ठीक है। क्यों कृष्ण का प्रतीक है? क्योंकि यह है उसके द्वारा वे अपना सब कुछ खो देते हैं। क्या शेर में ऐसा नहीं होता? धूम सब समाप्त हो जाता। ये भी विश्वास नहीं है लोगों का, लेकिन देखिए अगर कहीं कदाचित कुछ युद्ध हो जाए तो जितनी भी पैसे की वैल्यू है, कागज की वैल्यू है तथाकथित, वो एकदम जीरो पे आ जाती, एकदम से दम के नीचे आ जाती। और उसके लिए हमने कितना परिश्रम किया उन कागज के नोटों को प्राप्त करने के लिए। अब बताइए कि क्या कोई हमारी भक्ति को कोई खींच, कोई भी युद्ध क्या हमारी भक्ति को नष्ट कर सकता है? बताइए, क्या मृत्यु भी छीन सकती है? नहीं। काल छीन सकता है? नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसे अपने जीवन में कहां इन्वेस्ट करना है, कहां निवेशित करना है अपने समय को। मैं आपको लगता होगा मैं बातें रिपीट करता हूं, और हाँ ये बात रिपीट करता हूं क्योंकि शायद हृदय में धस्ती नहीं हमारे कि अपना जीवन हमें जो मानव जीवन का जो समय है वो कहां निवेशित करना है। और हमें ये भी लगता है कि बहुत समय, जैसे आप सुबह 10 बजे कैसा अनुभव करते हैं? अभी तो बहुत समय है, अनुभव करते हैं कि नहीं? सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद 10 बजे कैसा लगता है आपको? अरे अभी तो दिन बहुत समय है। और फिर रात में कैसे लगता है? शाम को कैसे लगता है? अरे पूरा जीवन निकल गया, पूरा दिन निकल गया। क्या ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता आप लोगों को? या कुछ सोचते ही नहीं इस तरह से? नोबडी थिंग्स, सोचता है व्यक्ति। तो ऐसे में लग रहा है कि बहुत जवानी है, अभी बहुत समय बका है, मतलब बाकी है, और एकदम से बुढ़ापा आ जाएगा, एकदम से मरने का समय आ जाएगा। तब व्यक्ति विचार करेगा मैंने कितना पुण्य किया, कितना भगवान की सेवा करी। और तब यह भी विचार होगा कि कितना समय मैंने आलस में व्यर्थ किया। बाकी छोड़ दीजिए आलस में व्यर्थ किया, व्यर्थ की विषयों में व्यर्थ किया। ये सब बहुत गंभीर बातें अगर आप विचार करेंगे, और अगर है थोड़ा सा हृदय में आ रही है आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। खैर, परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी या छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई पार नहीं पा सकता। एक और जगह छल किया भगवान ने, जयद्रथ के समय में। जयद्रथ आपको जानते हैं, वह बाहर आ गया था व्यू से, और भगवान ने सोचा, उसने सोचा कि अब तो वह इसको बंद कर दीजिएगा, बस। हाँ, तो उसने सोचा कि अब तो ये मरने का समय, अर्जुन के मरने का समय आया है। लेकिन भगवान ने क्या छल किया? सूरज को ही ढक लिया था, फिर सूरज को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। हाँ, और फिर द्रोणाचार्य के संबंध में भी उन्होंने छल से उनको मरवा दिया था। तो अगर कोई कहे कृष्ण बहुत बड़े छलिया हैं, तो सही बात है कि छल करने में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। एकांगी मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही विषय में भगवान महान है, हर विषय में महान है, उनको आप कोई पार नहीं पा सकता कृष्ण का। वे विजयी पुरुषों की विजय है, वे तेजस्वियों का तेज है, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहां तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। इसकी तो अंदाज भी नहीं लगा सकते कि गोवर्धन कितना भारी होगा, कितना वजन होगा किलो में तो पता नहीं सकते। एक अद्भुत बात यह है कि कैसे गलत व्याख्या करते हैं। जब भगवान ने कालिया का दमन किया तो कालिया भगवान को लपेटा हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे तथाकथित व्याख्याकार व्याख्या करते हैं कि जब कालिया ने कृष्ण को लपेटा था तो कृष्ण ध्यान कर रहे थे और इस कारण से उस तपस्या के दौरान उनको बल प्राप्त हुआ और वह कालिया के पास से मुक्त हो सके। अब आप ये बताइए कि कालिया अगर कालिया अगर उस व्याख्याकार को लपेट लेता तो क्या वो ध्यान कर पाता, बताइए। तो ये दिखाता है कि भगवान कितना भी आश्चर्य प्रस्तुत करें, जो जो फालतू लोग हैं वो ऐसी फालतू ही व्याख्या करेंगे। ठीक है, जब पूतना आई मारने के लिए तब भगवान कौन सा तपस्या किए, 5-7 दिन के थे ना, 6 दिन के थे, तो 6 दिन का बच्चा क्या तपस्या करेगा, फिर भी मार दिया। ये सब बातें हैं। एक छल का और लीला याद आ रही है, जब भगवान श्री राम ने माता दुर्गा देवी के संग छल किया था, तो ये लीला आप जानते हैं, फिर भी कहने की इच्छा हो रही है। एक बार शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे और उन्हें देखा कि श्री राम जो हैं वे रो रहे हैं सीता जी के विरह में, और फिर शिव जी ने उनको प्रणाम किया दूर से ही, तो दुर्गा देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुर्गा देवी अर्थात सती के रूप में, सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या, एक क्षत्रिय के लड़के को आप प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं क्षत्रिय नहीं, ये तो भगवान है। भगवान है, ये तो क्षत्रिय है। देखिए छल होना, छल माया देवी स्वयं भगवान की माया से भ्रमित हो गए। अभी एक और लीला याद आ रही है इसके अलावा, और फिर क्या होता है, कहते हैं फिर शिव जी वापस जा रहे होते हैं तो सती को संदेह होता है, तो कहते हैं ऐसा कर मैं परीक्षा ले लेती हूँ। तो जब आई तो सीता जी का रूप लेके आ गई, कहीं स्वामी आप किसको क्यों परेशान हो रहे, मैं तो यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो भगवान श्री राम ने उनको दिखाया कि माता जी आप यहाँ जंगल में क्यों घूम रही हैं, आपके पति शिव जी तो कहीं और हैं, ऐसा क्यों अकेले घूम रही हैं। तब वो समझ गए कि साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से वहां भी भगवान ने छल किया और एक जगह और छल मतलब विडंबन किया, और उसके बाद भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को भ्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो वैभ को भगवान को भ्रमित करना चाहते थे ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान ने उनको भ्रमित कर दिया। तो किसी भी मोहिनी मूर्ति में छल किया, बहुत सुंदर, मोहिनी मूर्ति में छल किया, किसको, असुरों को छल किया। ठीक है, वो छल नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान छल करने में भी बहुत है, और बल की तो कोई बात ही नहीं है, छोटे बच्चे के रूप में थे और मुष्टि को चानूर सबको फिनिश कर दिया भगवान ने, कंस को एक ही तमाचे में मार दिया। यहां तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। हम में से को किसी को बोल दिया बिना किसी लोड के हाथ ऐसे ऊपर रखो, 7 मिनट नहीं रख पाएंगे हम लोग, बड़ी कठिन हो जाएगा, 7 मिनट नहीं रख पाएंगे। ठाकुर जी पूरा 7 दिन तक गिरिराज रखती है, कल्पनातीत बात। उन्होंने तो कोई छल ना, उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस तथा बल में। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं, मेरे पीछे माइक बोलिए। वृष्णिनाम वासुदेवोऽस्मि,
वृष्णिनाम वासुदेवोऽस्मि,
पांडवानाम धनंजयः,
पांडवानाम धनंजयः,
मुनीनाम अप्यहं व्यासः,
मुनीनाम अप्यहं व्यासः,
कविनाम उषना कविः,
कविनाम उषना कविः।
वृष्णियों में मैं वासुदेव का पुत्र बलराम हूं। यहां लिखा द्वारकावासी कृष्ण, लेकिन मुझे स्मरण आ रहा है कि हाँ, देखिए अनुवाद जो शब्दार्थ है उसमें थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप प्रभुपाद जी का आप तात्पर्य देखेंगे और उसमें तो वो बलराम जी हैं, पता नहीं क्यों द्वारकावासी कृष्ण लिखा है। हम्म, नहीं अनुवाद में सॉरी शब्दार्थ में वासुदेव को द्वारका वासी कृष्ण को लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं फिर या तो इन्होंने ठीक से लिखा नहीं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, वासुदेव कृष्ण द्वारका लिखा हुआ है हाँ, लेकिन टीका में यही है बलराम जी, और प्रभुपाद जी उसको बलराम जी ही लिए, तो हम बलराम जी ही लेंगे। विष्णुओं में मैं वासुदेव यानी बलराम हूं, अच्छा है कम से कम कृष्ण का नाम आ रहा है, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण 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 बलराम ठीक कृष्ण लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है कृष्ण, लेकिन प्रभुपाद के आप तात्पर्य में देखेंगे तो बलराम जी है। पांडवों में मैं धनंजय हूं, मुनि नाम अप्यहम व्यासा, सारे मुनियों में मैं व्यास हूं, कवियों में मैं उष्णा मतलब शुक्राचार्य जी। अब इनकी जब टीका देखेंगे तो बड़ा अच्छा है, क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, देखिए, मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं, यानी कि शुक्राचार्य हूं, गीता भूषण टीका। विष्णु वंशियों में मैं वासुदेव का पुत्र संकर्षण या बलराम हूं, यहां वासुदेव का अर्थ कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को उनकी विभूति कहना ठीक नहीं होगा, समझ में। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि बलराम जी को वासुदेव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह भी वासुदेव जी के पुत्र थे, किसके द्वारा, रोहिणी के द्वारा नहीं देवकी के द्वारा, लेकिन देवकी के द्वारा नहीं रोहिणी के द्वारा, दोनों ही उनकी माँ थी, यस, देवकी के में मतलब उनको स्थापित किया गया था, लेकिन जन्म उनका रोहिणी से हुआ था, कितने आश्चर्य की बात है ना, अगर इस जगत में देखें कि भाई एक व्यक्ति के दो माताएं कैसे हो सकती हैं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह है और यही दिखाता है भगवान के दिव्य जन्म है, ठीक है। ये बात भगवान स्वयं योगमाया को कहते हैं कि बलराम जी को संकर्षण को आपको देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में स्थापित करना होगा, तो कहती मैं कैसे करूंगी, तो बड़ा कठिन कार्य है, कहते मेरी कृपा से आप कर पाओगी, और ऐसा करने से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप पूरे भारत में पूजी जाओगी कलयुग में। तो भगवान के ही आशीर्वाद से दुर्गा जी को इतनी पूजा प्राप्त है। यद्यपि वामन और कपिल या अन्य जिनका वर्णन इस अध्याय में पहले हुआ था साक्षात भगवान है, और इस कारण से सृष्टि के सृजनकर्ता वह सहारक हैं, फिर भी उनको विभूति कहने के द्वारा यह उद्देश्य था कि उनका ध्यान भगवान के अवतार के रूप में किया जाना चाहिए। यह हमारे सुमुद्र प्रभु के प्रश्न का उत्तर हो गया। याद है जब हमने पहला सुना था कि सर्वभूताशयस्तः महाविष्णु गर्भोदघ्रय विष्णु शिरोगतदघ्रय विष्णु, तो आपने कहा यह तो भगवान के अवतार है, ये विभूति कैसे है, तो टेक्निकल शब्द विभूति का नहीं लेना चाहिए कि केवल शक्ति मात्र है, अपितु भगवान के अवतार है, भगवान की शक्ति को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, आप समझ में आया। तो ये सब लोग अवतार हैं, इसलिए सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा गया था, तो वहां पे भगवान के अवतार हैं, वो भगवान ही लेकिन भगवान के अवतार है, इस कारण से वहां पर उनको भगवान की विभूति कहा गया। यह समझना चाहिए कि यद्यपि भगवान के विस्तार भगवान से अभिन्न है, परंतु वे अपनी साड़ी नहीं होना चाहिए, वे अपनी सारी होना चाहिए, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है, वे अपनी सारी शक्ति या गुण उस विशेष रूप में प्रकट नहीं करते। ये कौन से अवतार के बारे में बात हो रही है, नहीं स्वांश अवतार, स्वांश भगवान के जो अवतार हैं वे भगवान ही हैं, लेकिन यथा योग्य प्रयोजन वे अपनी शक्ति प्रस्तुत करते हैं, और शक्तावेश अवतार क्या होते हैं, उनको किसी प्रयोजन के लिए उतनी ही शक्ति दी जाती है। भूल गए, सब भूल गए, पांडवों ये हमारी विभूति है, भूलने वालों में मैं कलयुग का जीव हूं, ठीक है, अगली बार भगवान लिखेंगे तो लिख देंगे, तो सब भूलने में बहुत एक्सपर्ट है, मैं उसमें कलयुग का जीव हूं, ठीक है, आई एम कलयुगाइट्स अमंग भूलने वाला। पांडवों में मैं अर्जुन हूं, क्योंकि तुम मेरे अवतार के रूप में उत्कृष्ट हो, जबकि अन्य पांडव नहीं है। ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है ना, नर नारायण के रूप में जो नर हैं उनके अवतार अर्जुन हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, कितना ये मुझे बहुत अच्छी व्याख्या लगी थी। नोट, नर नारायण में अर्जुन नर हैं, यद्यपि नर जीव हैं, फिर भी इन दोनों को एक ही अवतार माना जाता है, लघु भागवतामृत के अनुसार है ये नर नारायण, लेकिन इनको एक ही अवतार माना जाता है, और नर जीव है, नारायण विष्णु तत्व है, लेकिन को एक ही अवतार माना जाता है, तो नर को भी भगवान का अवतार माना जाता है और वो है अर्जुन। इस कारण से उनको स्पेशल मुख्य रूप से कहा जा रहा है। आध्यात्मिक विषयों, हाँ ये बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक विषयों का मनन पारायण मुनियों में मैं व्यास अर्थात बादरायण हूं क्योंकि वे मेरे अवतार हैं, परंतु अन्य मुनि ऐसे नहीं है। मुनि मतलब मननशील, जो विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं व्यासदेव। अपनी समाधि में स्थित होकर उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं को देखा और उसको भागवतम में संकलित किया। ये केवल ऐसा कोई कविता नहीं लिख दी बैठकर। जैसे कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की लीलाओं को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला। इसे कहते हैं प्रकट या अनुभूत विज्ञान। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे हम कोई पिक्चर देखें ऐसा उनको दिखाई पड़ रहा है भगवान की लीला, और फिर उसको वर्णन कर रहे हैं। और आप जानते हो कि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के अवतरित होने से पहले ही सारी लीला लिख दिया था, उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। ठीक। सूक्ष्म अर्थ विवेचकों में मैं शुक्राचार्य हूं जिनको कवि के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म अर्थ मतलब कोई शब्द है और उसके कुछ सूक्ष्म अर्थ होते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसे भागवत में या भगवद गीता की टीकाओं में चर्चाओं में बोला है समझ में आ रहा है, हाँ हाँ प्रभु जी समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सूक्ष्म अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो समझ में आएगा, और कठिन बुद्धि होगी, मोटी बुद्धि होगी तो समझ में नहीं आता है। तो सूक्ष्म अर्थों पर विचार करने वालों में वह शुक्राचार्य हैं। जैसे कि जब बलि महाराज बोल रहे थे मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, तो शुक्राचार्य समझ गए ये कौन है, ये भगवान विष्णु है और 3 पग भूमि में पूरे विश्व को नाप लेंगे। है ना सूक्ष्म बुद्धि, बोल रहे हैं क्या लेकिन इसका अर्थ क्या है वो समझ रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी बड़े तेज थे। इस मामले क्या सुना
बलि महाराज को पहले ही वार्न कर दिया था कि ये हाँ। सब होगा तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
और देखिए अगर आप विचार करें तो भगवान विष्णु उसमें कुछ नहीं बोलने, मैं विष्णु हूँ और मैं तो बस केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ, लेकिन शुक्राचार्य समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज है वो। तात्पर्य, कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। चूंकि दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। समझ में आ गया, बलराम जी के बारे में बात हो रही। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश कहलाते हैं। विभिन्न अंश कौन है? जीवात्मा। स्वांश कौन है? विष्णु तत्व विस्तार जो भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। नर हैं, नर मतलब भगवान के, नर नारायण में नर के अवतार। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने में कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान का को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। ये बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार से कलयुग का एकदम निम्न कोटि का जीव वह हाईएस्ट एकदम उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसको उन्हें श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत किया। वैसे तो महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम को कलयुग के जीवों को दिया उन्होंने। बहुत विशेष उनका योगदान था। और व्यास को कृष्ण की अवतार की भी माना जाता है, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भक्तों का। कवि होना मतलब ये नहीं केवल कविता ही बोलना, अभी तो किसी विषय पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की शक्ति। इस पे महाराज बता रहे थे कि इंग्लैंड में कोई फिलोसोफर है और उसका वक्तव्य ये है कि इस जगत में प्राय लोग सोचते नहीं है। जैसे एक भक्त अपने ताई जी को पूछ रहे थे, आपने मुझे बर्थडे विश किया तो क्यों किया? उन्होंने कहा तुम्हारा हित चाहती हूं, तो मेरा हित किस में है? नहीं पता। तो हित चाहती हो तो ये तो पता होना चाहिए ना, हित किस में है? तो कुछ खाली यानी वो शब्द बोल रहे हैं, गंभीरता से विचार नहीं करते हैं कि इन शब्दों का महत्व क्या है, है कि नहीं? तो जब हम भक्ति बनते हैं या भक्त करने का प्रयास करते हैं तो विचारों की कुछ गंभीरता आती है। आनी चाहिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं। मैं कुछ कर्म कर रहा हूं, इसका क्या प्रभाव होगा मेरे जीवन पर, है कि नहीं? तो वो बता रहे थे कि इस जगत में प्राय लोग सोचते नहीं है, और मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं तो लोग मुझे बहुत बड़ा दार्शनिक मानते हैं, ये स्थिति। और महाराज बता रहे थे बहुत अच्छा किया, भक्ति में आने के बाद हर क्षण आप सोचने लगते हो, ये गुण आ ही जाता है। भक्तों का संग करके, जप करके हृदय शुद्ध होता है तो ये विचारशीलता आने लगती है। ऐसा नहीं करिए हम व्यास आसन पे बैठे हैं तो ही विचारशीलता होती है, नहीं है। आदमी विचार करता है कि भाई मेरे को क्या, मैं कर रहा हूं उसे क्या लाभ होगा मेरे। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।